निर्गमन
पाठ एक परिचय। आज हम तोरह की दूसरी किताब निर्गमन में एक रोमांचक, आंखें खोलने वाला और मुझे उम्मीद है आत्मा से भरा रोमांच शुरू करते हैं, और यह तय करने के लिए कि हम क्या अध्ययन करेंगे और यह हमें कहां ले जाएगा, मैं आपको निर्गमन का एक निरीक्षण देने में थोड़ा समय बिताना चाहूंगा
और यूसुफ की मृत्यु और मूसा के पहले उल्लेख के बीच के समय में इज़राइल के रहने की स्थितियों के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा।
तोरह के उस भाग का इब्रानी नाम जिसे हम निर्गमन कहते हैं शमोट है। शमोट का अर्थ है नाम, और निश्चित रूप से इस तथ्य से आता है कि पुस्तक के पहले शब्द ये इज़राइल के पुत्रों के नाम हैं से शुरू होते हैं।
बस एक त्वरित रिफ्रेशर के रूप में बाइबल की पहली पांच पुस्तकों को इब्रानी में तोरह कहा जाता है। इसका मतलब शिक्षण है, इसका मतलब कानून नहीं है, और तोरह जिसमें उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण शामिल हैं, पीरही दर पीरही मौखिक रूप से सौंपी गई परंपराओं के साथ साथ पवित्र पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को जो दिया था, जिसे हम माउंट सिनाई कहते हैं, उससे भी मिलकर बना है।
उत्पत्ति को अक्सर आरंभ की पुस्तक कहा जाता है। यह आरंभ है जो एस में समाप्त होता है, बहुवचन कई आरंभ। उत्पत्ति में यह मेरी राय है कि हमें वास्तव में ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में इतना नहीं बताया गया था, यानी वह समय जब एक अथाह विशाल शून्य कुछ बन गया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति की शुरुआत परमेश्वर द्वारा जीवन के लिए परिस्थितियां बनाने के बारे में है। दूसरे शब्दों में सृष्टि का विवरण यह बताते हुए शुरू होता है कि यह परमेश्वर ही थे जिन्होंने सब कुछ बनाया, और फिर बताते हैं कि पृथ्वी निराकार और शून्य थी, जिसका अर्थ है कि इसे बनाया गया था और यह ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की तरह जीवन के बिना कुछ अनिर्दिष्ट अवधि के लिए वहां बैठी थी। फिर हमें बताया गया कि अंधकार गहराई की सतह पर था, इसलिए पहले से ही एक गहराई थी, और अंत में कि परमेश्वर की आत्मा पानी की सतह पर घूम रही थी। तो हम जो देखते हैं वह यह है कि सृष्टि की कहानी भौतिक वातावरण की शुरुआत के बारे में है जो जीवन का समर्थन कर सकती थी, लेकिन यह कई आरंभों में से केवल पहली थी जिसके बारे में हमें उत्पत्ति में बताया जाएगा।
निर्गमन, शमोट कई मायनों में शुरुआत की एक और किताब है, और यह उन लोगों के राष्ट्र की शुरुआत की किताब है जिन्हें परमेश्वर ने चुना और ग्रह पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों से अलग किया। इज़राइली और यहोवा ने राजनीतिक, नागरिक और धार्मिक स्तरों पर अलग थलग राष्ट्र की स्थापना की। दूसरे शब्दों में, हालांकि पृथ्वी और तारे और जानवर और पौधे और मानव जाति सभी सृष्टि की कहानी के शुरुआती हिस्से में बनाए गए थे, परमेश्वर ने अभी तक सृष्टि के इन शिशुओं के साथ अपने दिव्य कार्य को विकसित करना समाप्त नहीं किया था। उसने सब कुछ बनाया और फिर बिना किसी और ढलाई और आकार के अपने आप विकसित होने दिया। निर्गमन पूरी तरह से ईश्वर केंद्रित है, और निर्गमन प्रभु की प्रकृति के बारे में कई महत्वपूर्ण समझ स्थापित करता है, जिनमें से अधिकांश को हम नए नियम का अध्ययन करने की प्रस्तावना के रूप में पहले से ही समझ चुके हैं। निर्गमन में हम सीखते हैं कि केवल एक ईश्वर है और उसका नाम युद्ध हेह बभेह है, कि वह वही ईश्वर है जो एल शद्दाई के रूप में कुलपतियों के सामने प्रकट हुआ था। वह सभी चीजों का निर्माता है, लेकिन वह ऊपर भी है, और उसने जो चीजें बनाई हैं उनका जैविक हिस्सा नहीं है। वह मौजूद है और वह निकट है, लेकिन उसका अस्तित्व किसी भी निर्मित चीज के समान नहीं है, सिवाय एक छोटे से हिस्से में मानव जाति के लिए। अब्राहम का यह ईश्वर किसी भी मूर्ति पूजक रहस्यमय बेबीलोन देवताओं से अलग है। उसका प्रभुत्व का क्षेत्र अनंत है, वह सीमाओं और सीमाओं से रहित है, उसकी शक्तियाँ अनंत हैं, और फिर भी वह लगातार मनुष्यों के साथ बातचीत करता है। दूसरे शब्दों में, इज़राइल का ईश्वर मानवीय मामलों में गहराई से शामिल है, और वास्तव में मानवीय मामलों का उपयोग एक बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है, और उसकी महान योजना में एक ऐसे इज़राइल राष्ट्र की स्थापना शामिल है जिसे वह बचाएगा, छुराएगा, सिखाएगा, पोषित करेगा और अनुशासित करेगा।
अतः यद्यपि इसराइल जैसा कि उत्पत्ति में रचा गया एक अलग और पहचान योग्य समूह था, फिर भी उत्पत्ति की पुस्तक में लिखे गए अंतिम शब्दों के समय यह अभी भी काफी आदिम रूप में था। ईश्वर ने अभी तक समाज की उस अनोखी व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत कम किया है जो इसराइल को अन्य सभी से अलग और विशिष्ट बनाती। लगभग एकमात्र चीज जो उन्हें मिस्रियों से अलग बनाती थी वह थी उनकी जाति और पेशा। वे मुख्य रूप से सेमाइट चरवाहे थे, जबकि मिस्र रिहाम की वंशावली से मवेशी पालक और ईंट बनाने वाले थे। बाइबल में निर्गमन वह स्थान है जहां हम एक और विभाजन, चुनाव और अलगाव देखते हैं। इसराइल बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है और लोगों के एक समूह से परिपक्व होकर लोगों के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अपनी संस्कृति और कानून, अच्छी तरह से परिभाषित नैतिकता और आचार विचार, अपना इतिहास, अपनी भूमि और अपना ईश्वर है, जो अपरिवर्तनीय नैतिकता और आचार विचार और न्याय प्रणाली स्थापित करता है जिसके अनुसार इसराइल को अपना जीवन जीना है। हम निर्गमन की शुरुआत में फसह के सिद्धांत से परिचित होंगे और पहला फसह वह महान और भयानक रात थी जब परमेश्वर ने मिस्र पर अंतिम विपत्ति भेजी थी, जिसके कारण फिरौन ने परमेश्वर के लोगों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, और यह वह विपत्ति थी जिसके परिणाम स्वरूप पूरे मिस्र में हर ज्येष्ठ बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हालांकि जिन लोगों ने अपने घरों के दरवाजों को मेमने के खून से रंगने के परमेश्वर के निर्देश का पालन किया उनके लिए मृत्यु दूर हो गई, अर्थात पूरे मिस्र को परमेश्वर के विरुद्ध उनके विद्रोह के लिए मृत्यु दंड के अधीन रखा गया था, लेकिन परमेश्वर ने केवल उन लोगों के लिए प्रावधान किया जो उस पर भरोसा करते थे, और वह प्रावधान एक निर्दोष मेमने से बहाए गए खून के माध्यम से था। केवल उस खून से ही वे बच सकते थे। यहां निर्गमन में भविष्य के मसीहा यीशुआ, यीशु मसीह के उद्देश्य के लिए पूरे बाइबल में इससे अधिक परिपूर्ण चित्र नहीं हो सकता है। और निर्गमन में हमें एक नई वाचा से भी परिचित कराया जाएगा। यदि आप मेरी कही गई बातों पर ध्यान दे रहे थे तो आपके कान शायद खड़े हो गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि क्या उसने अभी क्या कहा, निर्गमन एक नई वाचा। आप देखते हैं कि शब्दावली का हमारे द्वारा नई जानकारी को समझने के तरीके पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें आम तौर पर सिखाया गया है कि बाइबल दो मुख्य विभाजनों पर आधारित है जिन्हें पुराना नियम और नया नियम कहा जाता है। ईसाई धर्म में अधिकांश सब कुछ इस आधार पर आधारित है कि परमेश्वर द्वारा मानव जाति को सौंपे गए नियमों और कानूनों का एक मूल सेट था जिसे अंततः नए और बेहतर सेट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे नया नियम कहा जाता है। और गैर यहूदी इंजील ईसाइयों के लिए यह दृढ़ता से निहित किया गया है कि बाइबिल के बारे में अधिक जानने का कोई मतलब नहीं है जितना हम नया नियम में पा सकते हैं। इसलिए पुराना नियम को केवल प्राचीन इतिहास के रूप में या एक जिज्ञासा के रूप में देखा जाता है जो केवल विद्वानों और शिक्षाविदों के लिए उपयुक्त है, या शायद बच्चों के लिए दिलचस्प संडे स्कूल की कहानियां, और उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत समय है। आप में से जो लोग उत्पत्ति की पुस्तक का विश्लेषण कर चुके हैं वे शायद यह समझने लगे होंगे कि अधिकांश आध्यात्मिक सिद्धांत जिन्हें हम नए नियम में उत्पन्न मानते हैं पहले से ही कार्यरत थे और हम उन्हें पुराने नियम की सबसे प्राचीन पुस्तक में ही पा चुके हैं। मुद्दा यह है, हमें वास्तव में पुराने नियम और नए नियम को अपनी शब्दावली के कूड़ेदान में डालने की जरूरत है। हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का एक एकीकृत वचन, और जैसे परमेश्वर एक है वैसे ही हमारे पवित्र शास्त्र भी एक है। पुराने नियम को हटा दें और हमारे पास केवल आधी बाइबिल होगी। नए नियम को हटा दें और हमारे पास केवल आधी बाइबिल होगी, परमेश्वर का आधा वचन। और जब हम इनमें से कोई भी आधा हटा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आधी समझ खो देते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम जानते हैं उसका अधिकांश, यदि सभी नहीं, वास्तव में काफी अधूरा और गलत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नई वाचा और नया नियम एक ही चीज नहीं है। नई वाचा पुराने नियम यिर्मयाह 31 में घोषित की गई है। नई वाचा उन वाचाओं की श्रृंखला में से एक ओर की भविष्यवाणी है जो परमेश्वर मनुष्यों के साथ करेगा। प्रत्येक वाचा आवश्यक और महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वाचा अभी भी वैध है। नया नियम केवल यह दर्ज करता है कि यरमयाह में भविष्यवाणी की गई नई वाचा आई और यह कि यूसुफ के पुत्र यीशु बेन योरोफ मसीहा हैं जो हमारे लिए अपने प्रायश्चित रक्त को बहाकर नई वाचा लाते हैं। वास्तव में हम देखेंगे कि परमेश्वर मूसा को भी एक नई वाचा देता है, वही वाचा नहीं जिसे हम नई वाचा कहते हैं, लेकिन मूसा के लिए यह वाचाओं की एक श्रृंखला में नवीनतम थी जिसे प्रभु ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्थापित किया था। माउंट सिनाई पर दी गई वाचा यह है जिसे ईसाई आमतौर पर 10 आज्ञाएं या कानून कहते हैं। फिर भी जैसा कि हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे, इसमें परमेश्वर के 10 से कहीं ज्यादा बुनियादी कानून शामिल हैं।
मूसा को दी गई इस नवीनतम वाचा में हम एक नए प्रकार की वाचा से भी परिचित होंगे, एक सशर्त वाचा, एक ऐसी वाचा जो द्विपक्षीय है, एक ऐसी वाचा जो मनुष्य और साथ ही परमेश्वर पर आधारित है जिसमें प्रत्येक अपना अपना कार्य करता है, एक ऐसी वाचा जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच पारस्परिक है।
यह उस वाचा से पूरी तरह भिन्न है जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अब्राहम के साथ बांधी थी, क्योंकि वह वाचा जिसके कारण बाइबल में वाचा के वादे की रेखा की स्थापना हुई बिना किसी शर्त के थी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा एकतरफा थी। यह एकतरफा थी, पारस्परिक नहीं। यह सब परमेश्वर पर निर्भर था। मनुष्य कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था जिससे परमेश्वर उस वाचा से पीछे हट जाए या उसे बदल दे। दूसरे शब्दों में, पहले की वाचाएं केवल वाचाएं थीं। यहोवा ने अब्राहम से जो वादे किए थे, माउंट सिनाई पर मूसा को दी गई यह नई वाचा किसी भी तरह से अब्राहम को दी गई अलग और पुरानी वाचा की जगह नहीं लेती। यह कोई नया और बेहतर मॉडल नहीं था जिसमें सभी नवीनतम घंटियों और सीटी हों, जिसे किसी पुरानी और पुरानी वाचा को बदलने के लिए डिजाइन किया गया हो। यह बस एक और वाचा थी जो अब्राहम को दी गई वाचा से उद्देश्य और प्रकृति में पूरी तरह से अलग थी। फिर भी जिस तरह बाइबल का पहला भाग दूसरे भाग की नींव है, उसी तरह अब्राहम की वाचा मूसा को दी गई नई वाचा की नींव है। इसलिए अब्राहम और मूसा की वाचाएं बहुत अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं,
जैसे किसी किताब के अध्याय होते हैं। निर्गमन एक गाथा है, यह व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित एक विस्तृत कैनवास है। फिर भी हमें इसे धर्मनिरपेक्ष इतिहास के पाठ की तरह नहीं सोचना चाहिए। केवल घटनाएं और मानसिक चित्र जो दिव्य सिद्धांतों और उद्देश्यों को चित्रित और प्रदर्शित करते हैं हमारे अध्ययन के लिए दर्ज किए जाते हैं। इसलिए निर्गमन हमें घटनाओं और स्थानों और लोगों और संस्कृतियों के बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं देता है। यह मिस्र के शानदार और उन्नत समाज का वर्णन नहीं करता है, न ही वहां इसराइल के समय के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह हमें निर्गमन के मार्ग के बारे में सटीक जानकारी नहीं देता है। यह हमें निर्गमन के फिरौन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताता है। निर्जन निवास के निर्माण और उसके साथ होने वाले अनुष्ठानों के बारे में स्पष्ट निर्देशों को छोड़कर निर्गमन में विवरण की कमी है। उत्पत्ति के अंतिम अध्याय के समापन से लेकर निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत तक लगभग 350 वर्ष बीत चुके हैं। चुपचाप मानो परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता कि वह हमें मिस्र में क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा कुछ बताए, या ऐसा लगता है कि परमेश्वर बेचारे इसराइल को भूल गया है जो गर्मी और जबरन मजदूरी में तड़प रहा था, जो उनका भाग्य बन गया था और निस्संदेह उन इब्रानियों में से अधिकांश ने महसूस किया होगा कि वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है।
मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसराइल के साथ जो किया वह प्रतीकात्मक रूप से एक केक बनाना था। परमेश्वर ने इसराइल बनाने के लिए सामग्री का सावधानी पूर्वक चयन किया, फिर उसने उन्हें ठीक से मिश्रित होने तक मिलाया और फिर मिश्रण को पकाने के लिए ओवन में रख दिया। उसने अपना स्वर्गीय टाइमर ठीक उसी समय के लिए सेट किया जो उसे पता था कि इस इब्रानी केक को जमने, फूलने और उपयोग करने योग्य बनने के लिए चाहिए 400 साल और उसने इंतजार किया। हालांकि उसने निस्संदेह बेकिंग प्रक्रिया की निगरानी की, लेकिन सामान्य तौर पर उसकी ओर से कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। केक ओवन में तब तक रहता जब तक टाइमर बंद नहीं हो जाता और यह पककर तैयार हो जाता। खैर, जब परमेश्वर ने ओवन खोला तो इसराइल बाहर निकल आया, और जाहिर है कि जब इसराइल मिस्र के ओवन में पक रहा था उस दौरान क्या हुआ, इसका विवरण हमें बताने में कोई मतलब नहीं था, इसलिए बाइबल में उन वर्षों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं है। तोरा हमें अनिवार्य रूप से दो बुकेंड, जिनके बीच की पुस्तकें गायब हैं, प्रस्तुत करता है, जो स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक था। यदि सबसे महत्वपूर्ण नहीं, तो परमेश्वर के इस निर्णय के लिए कि इज़राइल वास्तव में मिस्र में लंबा समय बिताएगा। पहला बुकेंड उत्पत्ति 46 का 3 है, जहां परमेश्वर याकूब से कहता है, मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, और वह एक बुकेंड अकेला खड़ा है।
जब तक कि अगला भाग निर्गमन की आरंभिक पदों के तुरंत बाद नहीं आता, और इज़राइल के बच्चे फलने फूलने लगे और बहुत बढ़ गए और बहुत शक्तिशाली हो गए और देश उनसे भर गया, परमेश्वर ने इज़राइल के विशाल जनसंख्या समूह की भविष्यवाणी की, घोषणा की कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। यह सब कैसे हुआ, यह मनुष्य के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का एकमात्र मिशन यह सुनिश्चित करना था कि उसके दिव्य उद्देश्य पूरे हों, न कि यह कि आने वाली पीढ़ियों को इसका एक एक करके विवरण मिले। शायद कुछ इसराइलियों को याद था कि परमेश्वर ने उनके पूर्वज अब्राहम और बाद में याकूब से कहा था कि मिस्र कुछ समय के लिए उनका भाग्य था, और शायद उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस तरह मिस्र में उनके प्रवास और उनकी जनसंख्या विस्फोट की भविष्यवाणी सच हुई थी, उसी तरह यह परमेश्वर के नियत समय पर होगा, जैसा कि उत्पत्ति 46:4 में वादा किया गया था। 3 शताब्दियों के बाद परमेश्वर से बहुत कम इनपुट के साथ उन इब्रानियों ने वास्तव में उन कीमती और आश्वस्त करने वाले प्रतिज्ञों के बारे में कितना याद किया होगा, गुलाम मजदूरों के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अब उस पर कितना भरोसा करेंगे जिसने उन दूर दूर के वादों को किया था। उस समय उस पर भरोसा करें जब वे एक ऐसी संस्कृति के बीच रहते थे जो जानवरों, मनुष्यों और सूर्य, चंद्रमा और सितारों को देवता मानती थी और उनकी पूजा करती थी। एक ऐसी संस्कृति जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में पूरी तरह से चिंतित थी और परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मिस्र की यह मृत्यु संस्कृति शायद उन कारणों में से एक थी जिसके कारण हम तोरह में मृत्यु और उसके बाद के जीवन पर चर्चा करने में इतनी झिझक देखते हैं। पुराने नियम में कभी भी मरने और स्वर्ग जाने की अवधारणा का परिचय नहीं दिया गया है। वास्तव में मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर पुराने नियम में बमुश्किल ही चर्चा की गई है, और यह हमें सबसे धुंधली तस्वीरें देता है। मिस्र का धर्म शानदार स्मारकों और परमेश्वर की छवियों में से एक था, और यह मृत्यु पर केंद्रित था। पिरामिड केवल विस्तृत दफन कक्ष और जीवन के बाद जीने के लिए आत्मनिर्भर साम्राज्य थे। इसलिए इज़राइल का धर्म एक छविहीन धर्म बन गया, और एकमात्र अधिकृत स्मारक जो हमें निर्गमन में मिलेगा वह एक मामूली तंबू संरचना थी जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ रहने के लिए बनाया था, और मृत्यु के विषय को केवल एक रहस्यमय तथ्य के रूप में निपटाया गया था।
दुर्भाग्य से हमारे लिए निर्गमन की शुरुआत सीधे मुद्दे पर आकर होती है, और हमें मिस्र में इब्रानियों की स्थिति के बारे में केवल व्यापक शब्दों में बताती है। संक्षेप में अध्याय 1 की पदें मूसा के माध्यम से फिरौन के साथ परमेश्वर की आगामी लड़ाई के लिए मंच तैयार करती है, लेकिन मिस्र में इसराइलियों के समय के बारे में ऐतिहासिक महत्व की जानकारी के अन्य स्रोत मौजूद होंगे, यानी बाइबल के अलावा अन्य स्रोत, और हम कई दिलचस्प चीजों का पता लगाएंगे जो इस जानकारी का उपयोग करती है, जिसमें निर्गमन का मायापद मार्ग, माउंट का स्थान शामिल है। निर्गमन की पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए और न केवल यह समझने के लिए कि यह क्या कहती है, बल्कि समग्र धर्मशास्त्रीय चित्र के संबंध में इसका क्या अर्थ है, हमें पीछे खड़े होकर इसे एक संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ऐसे विषय और पैटर्न और तार्किक विभाजन हैं जो उभर कर आते हैं और जो सभी मिलकर हमें एक राष्ट्र के रूप में इज़राइल के गठन और परिपक्वता की अच्छी समझ देते हैं और निर्गमन की सामग्री को समझना समझने की कुंजी है। बाइबल में आगे जो कुछ भी लिखा जाएगा, प्रसिद्ध बाइबल विद्वान एवरेट फॉक्स निर्गमन की पुस्तक में 6 विभाजन देखते हैं। अब मैं शुरू से ही बता दूं कि जिस तरह पुराना नियम और नया नियम के मानक बाइबल विभाजन 66 नामित पुस्तकें और सभी क्रमांकित अध्याय और पद पूरी तरह से मानव निर्मित हैं और उनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, उसी तरह निर्गमन की पुस्तक में 6 विभाजन की अवधारणा भी है। यह सब कुछ हद तक मनमाना है। इन सभी विभाजनों का उद्देश्य केवल हमारे सीमित छोटे दिमाग को पवित्र शास्त्र की विशाल मात्रा से निपटने का एक तरीका देना है। वे इस बारे में क्या कहते हैं कि आप एक हाथी को कैसे खाते हैं, एक बार में एक निवाला, और विशिष्ट बाइबल अंशों के बारे में आपस में संवाद करने का एक अधिक कुशल तरीका, जैसा कि हम अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं और परमेश्वर के वचन को हम खोजते हैं। इसलिए एबरेट फॉक्स की पद्धति के अनुसार वह निर्गमन के आरंभिक भाग 6 में से पहले भाग को उद्धार कथा के रूप में देखता है, अर्थात परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों इसराइल को छू रहा है। इन पहले कुछ अध्यायों में उन परिस्थितियों और तरीकों की समीक्षा की जाएगी जिन्हें परमेश्वर ने मुख्य रूप से मूसा और फिरौन के माध्यम से अब विशाल इब्रानियों के राष्ट्र को मिस्र छोड़ने की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे समय में जब यह आखिरी चीज थी जिसे फिरौन देखना नहीं चाहता था, क्योंकि फिरौन अच्छी तरह जानता था कि इज़राइल का मिस्र छोड़ना उसके राष्ट्र के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। भाग 2 को वह जंगल का अनुभव कहता है। यह मिस्र से भागने के तुरंत बाद एक बंजर भूमि पर यात्रा करते हुए शरणार्थियों के विस्थापित समूह के रूप में इज़राइल के अनुभवों से संबंधित है। वह आरंभिक अवधि जब परमेश्वर इज़राइल को दिखाएगा कि वह कौन है, कि वह भरोसेमंद है, कि वह पवित्र है और कि वह न्यायी है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और यह उसके द्वारा उन्हें यह दिखाने के साथ समाप्त होगा कि वे उसकी दृष्टि में कौन हैं, क्योंकि वे मिस्र में जो थे उससे दूर चले जाते हैं। इससे विभाजन 3 वाचा और कानून की ओर ले जाता है, लेकिन जिसे अधिक सही ढंग से तोरह कहा जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं इज़राइल की संरचना से निपटना शुरू करता है, विशेष रूप से सामाजिक और धार्मिक संरचना। मिस्र में इज़राइल मिस्र का एक अंग मात्र था, हालांकि अब वे परमेश्वर के उस पहले महान शासकीय गतिशीलता का अनुभव करते हैं जिसकी हमने लगभग 1 वर्ष पहले चर्चा की थी, विभाजन, पृथक्करण और चुनाव। इज़राइल विभाजित और अलग होने की प्रक्रिया में था और परमेश्वर की छवि में निर्मित एक राष्ट्र में डाला जा रहा था और उसकी सेवा के लिए, और परमेश्वर द्वारा मूसा को तोरह देने के माध्यम से उसने प्रभावी रूप से इज़राइल को जीवन जीने के लिए एक मैनुअल भी दिया, एक छुरा ए गए लोगों के लिए जीवन जीने के लिए एक मैनुअल, परमेश्वर के साथ सद्भाव में रहने के लिए एक मैनुअल। किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं थी। बाइबल के संरचना विषय के साथ आगे बढ़ते हुए प्रभाग 4 निर्देशों ब्लूप्रिंट्स पर आगे बढ़ता है। यदि आप चाहें तो एक संरचना के निर्माण और उस संरचना में सेवा के लिए एक पुजारी की स्थापना के लिए, ताकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के बीच निवास कर सकें, और उस निर्माण संरचना को हम जंगल का तंबू कहते हैं। चूंकि जंगल का तंबू एक आध्यात्मिक और स्वर्गीय स्थान का एक भौतिक मॉडल है जिसका सैकड़ों साल बाद पहले मंदिर के साथ पालन किया जाएगा, हम इसकी खोज में काफी समय बिताएंगे। तंबू के डिजाइन और परमेश्वर द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों के पीछे प्रतीकात्मकता जो पुजारी वहां करते थे, क्योंकि डिजाइन और अनुष्ठान दोनों ही भविष्य सूचक होने के साथ साथ
प्रतीकात्मक शिक्षण उपकरण भी हैं और यह हमें बहुत कुछ समझने में मदद करेगा जो नया नियम में हमसे छिपा हुआ है। यदि हम पहले तंबू और इसकी सेवाओं का अर्थ नहीं समझते हैं, खासकर जब यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर लागू होता है।
इसके बाद जब परमेश्वर ने अपनी दिव्य रूप से व्यवस्थित संरचना को सामने रखा तो भाग 5 में दिखाया गया है कि मनुष्य अपनी संरचना को उसी तरह लागू करके प्रतिक्रिया करता है जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी पतित जाति की संरचना की अवधारणा की अपेक्षा कर सकता है। वे एक स्वर्ण बछरा बनाते हैं।
ऐसा करके वे मिस्र के अपने पुराने और परिचित तरीकों पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जो होता है वह भयानक परिणाम होता है जब मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करता है, मूर्ति पूजा में संलग्न होता है और कैसे परमेश्वर सुलह के लिए एक बहुत जरूरी मार्ग प्रदान करता है। जब मनुष्य ऐसे न्याय परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, विद्रोह करता है, निर्गमन के इस भाग को श्री फॉक्स उचित रूप से बेवफाई और सुलह कहते हैं।
निर्गमन का छठा और अंतिम भाग जंगल में निवास स्थान के वास्तविक निर्माण तथा उसके बाद परमेश्वरीय संरचना में परमेश्वर के निवास से संबंधित है। मुझे नहीं लगता कि एवरेट फॉक्स ने, जिस तरह से मेरा मानना है कि उचित रूप से निर्गमन को विभाजित किया है, उसके माध्यम से कोई समानता बनाने का इरादा किया है। लेकिन यह हमें यह देखने के लिए एक दिलचस्प उपकरण देता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है और यह हमें उन पैटर्नों की कल्पना करने में मदद करता है जिन्हें परमेश्वर पूरे बाइबल में विकसित और उपयोग करता है और हम विश्वासियों के रूप में अपने जीवन में भी इसी परमेश्वर पैटर्न को उभरते हुए देखते हैं। उद्धार, जंगल का अनुभव, वाचा और व्यवस्था, तुरह जीवित वचन प्राप्त करना, तंबू हम तैयार करना ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ रह सके, हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रति अपरिहार्य बेवफाई जो कि अभी भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, और सुलह के लिए उसका अनुग्रह पूर्ण प्रावधान, और अंत में तंबू की पूर्णता और पूर्णता जो अभी भी भविष्य में है। लेकिन निर्गमन की इस संरचना से परे कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका उपयोग परमेश्वर करता है जो इस सब को एक सुंदर एकता प्रदान करते हैं। दुख की बात है कि हमारी अधिकांश आधुनिक अंग्रेजी बाइबलें इस एकता को विभिन्न स्तरों पर छिपाती हैं, क्योंकि ये शब्द इब्रानी मूल के हैं और जिस तरह से इब्रानी शब्दों का उपयोग किया जाता है वह अंग्रेजी से काफी अलग है। हम निर्गमन में देखना, महिमा करना, सेवा करना और जानना जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति पाएंगे। अंग्रेजी इसे समझना थोड़ा
कठिन बना सकती है और मैं चाहता हूं कि आप इन शब्द पैटर्न को खोजने के लिए निर्गमन के माध्यम से आगे बढ़ने के दौरान जागरूक और तैयार रहें। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आइए हम बार बार आने वाले मूल शब्द सेवा को लें। जैसे जैसे हम निर्गमन की ओर बढ़ेंगे इसका रूप और जोर बदलता जाएगा। हम देखेंगे कि इब्रानियों ने फिरौन की सेवा से लेकर परमेश्वर की सेवा तक का रुख किया। जब इब्रानियों को तोरह दिया जाता है तो उन्हें अन्य देवताओं की सेवा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी जाती है। तोरह यह भी निर्दिष्ट करता है कि परमेश्वर के बच्चों के रूप में इसराइलियों को सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उन्हें तंबू में सेवा कैसे करनी है और परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है। अब यह उदाहरण न तो बनावटी है, न ही यह रूपक है या सिर्फ एक चिकनी साहित्यिक शैली है, यह विशिष्ट है। मैं आपको बाइबल के इब्रानी की अनूठी और सार्थक शब्द संरचना के महत्व को समझाने के लिए इस क्षणिक चक्कर पर ले जा रहा हूं जो एक मूल शब्द जैसे सेवा लेता है और फिर इसे ढालता है और इसे शास्त्र के भीतर इस तरह से आकार देता है कि यह विशेष रूप से इसे एक बोले गए शब्द के रूप में सुनने के लिए सहायक है, सुनने के माध्यम से इसे आत्मसात करना और फिर इसे याद रखना। ये इब्रानी शब्द पैटर्न हमें बिंदुओं को, जो रने में भी सबसे उपयोगी हैं, यानी हम विचार पैटर्न का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी रचना को ऐसे जैविक और जटिल तरीके से बुनते और विकसित करते हैं जो कभी भी कल्पना करने और कार्यान्वित करने की मानवीय क्षमता से कहीं परे है। एक अवधारणा दूसरे से जुड़ी हुई है और फिर अगली और अगली एक श्रृंखला बनाते हुए प्रत्येक छोटा कदम आवश्यक है, चाहे यह सब हमें कितना भी दर्दनाक और लंबा क्यों न लगे। और यह सब केवल उसी तरीके से किया जा सकता है जिससे परमेश्वर मानव जाति को सृष्टि से पुनः सृष्टि के स्थान पर ले आए और उसके साथ पूर्ण एकता स्थापित करे, जिसकी वह इच्छा करता है और वह करेगा। और इस दिव्य योजना की नींव और संरचना और यह अपरिवर्तनीय पैटर्न निर्गमन में पूरी तरह से निर्धारित है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यह सब याद रखने की अपेक्षा नहीं करता, बस इसे मानसिक रूप से नोट कर लें, ताकि जब हम अगले 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक निर्गमन में बिताएं तो समय समय पर प्रकाश आता रहे।
चूंकि बाइबल हमें इसराइलियों के मिस्र में प्रवेश करने से लेकर परमेश्वर द्वारा मूसा को मिस्र से बाहर निकालने के लिए तैयार करने तक के 350 वर्षों के बारे में अधिक जानकारी नहीं देती है, इसलिए मैं कुछ मिनट निर्गमन के शुरुआती दृश्यों के लिए यथासंभव सटीक सेटिंग चित्रित करने में बिताना चाहता हूं। और यह जानकारी पुरातात्विक खोजों के साथ साथ मिस्र, यूनानी और रोमन ऐतिहासिक अभिलेखों से आती है। मिस्र में बिताए गए पहले 1 से 2 शताब्दियों इसराइलियों के लिए समृद्ध थीं। सभी संकेत इस बात के हैं कि वे आराम से और शांतिपूर्वक रहते थे। उन्हें फिरौन द्वारा यूसुफ के लिए धन्यवाद गोशेन की भूमि में एक स्थायी क्षेत्र आवंटित किया गया था, जो उनके चरवाहे की जीवन शैली के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। गोशेन मिस्र के निचले मिस्र नामक क्षेत्र में था, हालांकि यह मिस्र के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। नोफ निचले मिस्र की राजधानी थी और संभवतः यही वह जगह थी जहां यूसुफ ने पहली बार अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया था, जो विश्वव्यापी अकाल के कारण अनाज प्राप्त करने के लिए मिस्र आए थे।
लेकिन नए साक्ष्य जो उन लोगों द्वारा एकत्र किए गए थे जिन्होंने जो कुछ खोजा था उसके अलावा कुछ और ही अपेक्षा की थी, वह यह है कि यूसुफ के पास शहर में एक महल भी था जहां बहुत से इसराइली रहा करते थे। एवरेस्ट और यह बहुत स्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योंकि यूसुफ अपने पिता, भाइयों और अपने इब्रानी परिवार के सदस्यों के करीब रहना चाहता था।
जैसा कि कल्पना की जा सकती है, हर इब्रानी चरवाहा नहीं रहा। कई लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया, इसमें कोई संदेह नहीं। मिस्रियों से सीखा जो वास्तुकला में माहिर थे, अन्य व्यापारी बन गए और कुछ तो पशुपालक और किसान भी बन गए। फिर से उन्होंने ये व्यवसाय मिस्र के नागरिकों और उन कई विदेशियों के संयोजन से सीखा होगा जिनके संपर्क में वे आए होंगे, क्योंकि वे उसी क्षेत्र में रहते थे जहां से कई विदेशी आए थे। जिस क्षेत्र को अब हम मध्य पूर्व कहते हैं, उसे मिस्र आते समय उचित तौर पर वहां से होकर गुजरना पड़ता था। बाइबल की किताबें और मिस्र के बहुत से स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि इब्रानी लोग सिर्फ गोशेन की जमीन तक ही सीमित नहीं थे, न ही वे मिस्र के दूसरे इलाकों में जाने से कतराते थे। समय के साथ बहुत से लोग फसल उगाने में माहिर हो गए और नील नदी के जबरदस्त संसाधनों का फायदा उठाया।
इसके अलावा वे अलग अलग हद तक मिस्र की संस्कृति में घुल मिल गए। मूल मिस्र वासियों के साथ रोजमर्रा के व्यवहार और अंतरजातीय विवाह के जरिए इसराइल और मिस्र के बीच कामी नजदीकियां बनी, और मिस्र की संस्कृति को स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने मिस्र के कई धार्मिक विचारों और रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया। मिस्र में उनके प्रवास के आधे रास्ते के आसपास एक समुद्री परिवर्तन हुआ और इसने हमेशा के लिए इसराइलियों के जीवन को बदल दिया। यूसुफ के मिस्र में एक गुलाम के रूप में आने से कुछ दशक पहले तथाकथित हक्सोस शासकों ने मिस्र के अधिकांश हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, मुख्य रूप से निचले मिस्र पर। हक्सोस मध्य पूर्व में कहीं से थे, वे रोमाइट थे, इसराइल के चचेरे भाई। चाहे वे कहीं से भी हों, वे मिस्र के नहीं थे, वे विदेशी थे, और मिस्र के लोग इन चरवाहे राजाओं द्वारा शासित होने से घृणा करते थे, जैसा कि वे जाने जाते थे। उनका प्रभुत्व घटता बढ़ता रहा, समय समय पर ऊपरी मिस्र दक्षिण में और ऊपरी और निचले मिस्र के बीच के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करते रहे, और अनिवार्य रूप से जमीन भी खोते रहे। आखिरकार ऊपरी मिस्र की राजधानी थेब्स नामक शहर, जिसे अब लक्सर के नाम से जाना जाता है, में एक मिस्र के जनरल ने मिस्र के नागरिकों की एक रोना इकट्ठा की और नफरत करने वाले हक्सोस शासकों को हमेशा के लिए हरा दिया। अब इसराइली लोग मिस्र के लोगों द्वारा पैदा की गई लगभग 2 शताब्दियों की करवाहट का केंद्र बिंदु बन गए, जिसकी शुरुआत निसंदेह इब्रानी यूसुफ द्वारा उस प्रसिद्ध 7 वर्षीय भयंकर अकाल के दौरान भोजन के बदले में उनकी दास्ता स्वीकार करने से हुई थी।
मिस्र के नए राजा का पहला काम मिस्र को खतरे में डालने वाले किसी भी विदेशी प्रभाव को खत्म करना था, और इसका मतलब था कि इसराइलियों पर नियंत्रण पाना, जिनकी संख्या खतरनाक अनुपात में बढ़ गई थी। निस्संदेह नील डेल्टा क्षेत्रों में इसराइली बहुसंख्यक लोग थे, लेकिन वे मिस्र के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गए और खुद को स्थापित कर लिया।
अतः समाधान सीधा और सरल था, उन्हें अपने अधीन कर लो, इसराइलियों को जबरन मजदूर बना दो। व्यावहारिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से और लगभग रातों रात किस्मत बदल गई। इसराइली जो अमीर हो गए थे, संख्या में बढ़ गए थे
और मिस्र में राजनीतिक प्रभाव प्राप्त कर चुके थे, उन्हें बेदखल कर दिया गया और वे निम्न वर्ग में आ गए। मिस्र के लोग, जिन्हें इतने लंबे समय तक इसराइलियों से कमतर दर्जा दिया गया था, अब सत्ता में थे। जबकि गुलामी का विचार हमारे लिए घृणित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गुलामों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, स्वतंत्रता के पूर्ण नुकसान के अलावा। वास्तव में अधिकांश साक्ष्य यह है कि मिस्र में उनके अंतिम कुछ वर्षों को छोड़कर इब्रानियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। हमें मिस्रियों को स्वाभाविक रूप से क्रूर और असभ्य नहीं समझना चाहिए। वे उच्च विचारों वाले लोग थे, जिनमें गहरी जड़ें जमाए हुए और परिष्कृत नैतिकता और आचार विचार थे, शिक्षित, बुद्धिमान और दूरदर्शी। इसके अलावा एक अपंग या मृत दास का क्या उपयोग था?
सेसिल बी डेमिल ने 10 आज्ञाओं के अपने प्रसिद्ध रीमेक में दुनिया को जो बताया, उसके बावजूद इसराइलियों ने पिरामिड नहीं बनाए। वास्तव में मिस्र में याकूब के आगमन के समय तक पिरामिड निर्माण का युग समाप्त हो चुका था। इब्रानियों को 30 टन के पत्थर के निर्माण ब्लॉकों के रोलर्स के नीचे मानव स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया गया था। उनका काम मिट्टी की ईंट बनाने, जलमार्गों और नहरों की खुदाई और जीर्णोद्धार और महान शहरों के निर्माता के रूप में था। इसराइलियों को गोशेन के क्षेत्र में 2 महान भंडार शहरों पिथोम और रामसेस के निर्माताओं के रूप में सबसे अधिक पहचाना जाता है, और निश्चित रूप से यहीं पर यूसुफ के समय के कुछ वर्षों बाद से अवारिस का महान इब्रानी एनक्लेव अस्तित्व में था। एक भंडार शहर का मतलब केवल यह था कि यह एक क्षेत्रीय आपूर्ति डिपो और वितरण केंद्र था। इस मामले में ये शहर नागरिक आबादी और मिस्र की सेना दोनों की सेवा करते थे, और गोशेन में रणनीतिक रूप से स्थित थे, क्योंकि यह उनकी पूर्वी सीमा के सबसे करीब था और क्योंकि यह एक खाद्य उत्पादक क्षेत्र था।
मिस्र के विज्ञान, संस्कृति और कला की प्रतिभा तथा इसराइलियों के जबरदस्त कौशल और कार्य नीति, भले ही यह काम मजबूरी में किया जाता था, के कारण मिस्र एक विश्व स्तरीय समाज बन गया।
हम कई दिनों तक बात कर सकते हैं और मिस्र की अद्भुत सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धियों की जांच कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में इस कक्षा के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इतना कहना ही काफी है कि मेरे अनुमान में मिस्र की भव्यता अपने चरम पर आज तक पार नहीं की जा सकी है। आज का पिछड़ा और गरीब समाज मूसा के समय के मिस्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता।
यह हमारे अध्ययन के लिए एक आधार के रूप में भी अच्छा है कि हम समझें कि मिस्र दुनिया का अन्न भंडार था, और यह कितनी विडंबना है यह देखते हुए कि उनकी वार्षिक वर्षा लगभग नगण्य है।
बल्कि यह नील नदी का कार्य है जिसने मिस्र को एक अविश्वसनीय खाद्य मशीन बनाया। नील नदी हर साल उफान पर रहती थी और अपने किनारों के आसपास के खेतों में समृद्ध उपजाऊ गाद जमा करती थी। इन खेतों को पानी देने के लिए प्राचीन काल से ही सिंचाई प्रणालियां बनाई जाती रही हैं। बाद में, लेकिन इसराइलियों के समय से भी पहले नहरें बनाई गईं, ताकि उनके किनारे नील नदी के साथ बह सकें। यह नील नदी से परे खेतों का विस्तार करने और फिर भी इसके सभी लाभों का लाभ उठाने का एक तरीका था।
मिस्र के वजीर के रूप में यूसुफ के करियर के अंतिम समय में जल भंडारण के लिए कई कृत्रिम झीलें बनाई गई कृषि में उपयोग के लिए, मवेशियों के बढ़ते झुंडों जिन्हें मिस्र के लोग भेड़ों से ज्यादा पसंद करते थे को पानी पिलाने के लिए और बढ़ती आबादी के लिए घरेलू उपयोग के लिए। वास्तव में यूसुफ के नाम पर कई जलमार्ग हैं जो आज भी उपयोग में हैं और अभी भी यूसुफ के नाम से जुड़े हुए हैं।
मैं निर्गमन की इस प्रस्तावना को यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि मिस्र में इसराइलियों के समय यह एक ऐसी भूमि थी जो बहुत समृद्ध थी, सुंदरता और कला से भरपूर थी। यह एक ऐसी भूमि थी जिससे ईर्ष्या की जा सकती थी। जब हम निर्गमन में इसराइलियों को सिनाई के जंगल में अपनी असुविधा के बारे में शिकायत करते हुए पाते हैं तो हम उन्हें मिस्र में अपने जीवन के लिए तरसते हुए भी सुनते हैं। बेशक जबरन मजदूरी वाला हिस्सा नहीं बल्कि भोजन, आश्रय और एक शानदार और परिचित संस्कृति का हिस्सा होने की निश्चितता है।